संत महात्मा भक्तजन वो हमेशा हमेशा ही ऐसी एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस संसार को वो देन वो देते आए हैं, जैसा कि आज भी ये देन दी जा रही है। एक ऐसी ठंडी फुहार जहाँ तपता हुआ एक कोई स्थान हो, जहाँ तपश हो और वहाँ पर ठंडी फुहार हो जाए, सभी नाच उठते हैं और इस कदर बहुत राहत महसूस करते हैं। इसी प्रकार से एक तपते हुए हृदयों के ऊपर ये ठंडी फुहार ये जब गिरती है तो ये तपते हुए हृदय भी शीतल हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भक्ति, ये प्रेम, ये करुणा, ये प्रभु निराकार का एहसास, तो इस कदर ये शीतलता ही इस मन में स्थापित हो जाती है। और ये तपते हुए हृदय केवल ठंडक ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि यही वो हृदय तपते हुए जो वैर ईर्ष्या नफरत की आग में जल रहे, जो इस तरह से धरती को नरक बनाने में लगे हुए, जहाँ पर दानवता वाली प्रवृत्तियाँ, तो उसकी जगह पर सज्जनता और प्रेम स्थापित हो जाना, तो इस तरह से दोनों ही परिणाम कि एक तो तपस्वी दूर हुई और दूसरी तरफ ऐसा एक रूपांतरण हुआ कि वो बिगड़ा हुआ रूप एक सुंदरता को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये संत महात्मा भक्तजन ये योगदान ये युगों युगों से देते आए हैं और आज भी यही योगदान भक्तजन ये दिए चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तमाम भक्तों महापुरुषों की वाणी, चाहे रामचरितमानस से आपने पढ़ा कि किस तरह से और भी संतों के वचन हम सुनते हैं कि संत हृदय नवनीत समान, कि ये संतों के हृदय होते ही ऐसे हैं, कि ये दया करुणा के भाव से भरे होते हैं, ये सारे संसार का कल्याण चाहते हैं। इस तरह से तुलना की गई कि ये केवल नवनीत समान ही नहीं कि इतने नरम, बल्कि ये भी आगे, इससे भी आगे गहराई, इससे भी आगे उनकी ऊंची भावनाएं मिसाल दी जाती है कि एक नवनीत एक माखन की उस एक ऐसी टिकिया को आँच लगती है तो वो माखन की टिकिया पिघल जाती है। तो जिस माखन की टिकिया को आँच लगती है वो पिघलती है, लेकिन संतों का हृदय ये तो उससे भी कहीं आगे है कि आँच कहीं और लगती है और पिघल ये जाते हैं। दर्द किसी और को पहुँचता है, महसूसियत ये कर लेते हैं। इसीलिए सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये इनके मन की भावनाएं होती हैं। हर किसी का भला चाहते हैं, इस प्रकार से नहीं चलो उसका बिगड़ा है उसका नुकसान हुआ है, कहीं उस मोहल्ले में आग लगी है, उस मकान में लगी है, मेरे में तो लगी नहीं है। नहीं, आँच कहीं और भी आती है तो इनके हृदय पिघल जाते हैं। इस प्रकार से ये दर्द से भरे होते हैं, इस प्रकार से हितकारी होते हैं, इस प्रकार से ये संसार को सजाने संवारने में अपने योगदान देते हैं। तो अवसाध संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों की महिमा तभी मानी गई है, इसीलिए इनका रुतबा इतना ऊंचा माना गया है। तमाम दुनिया के ताकतवर और सम्राट दौलत वाले, उन सबसे ऊंचा दर्जा संतों को ही दिया गया है कि वाकई ही जो स्थान पे ये पहुंचते हैं, युग बीत जाएं लेकिन इनकी महिमा कम नहीं होती है। ये इस प्रकार से वो रोशन मीनार होते हैं जो युगों युगों प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। श्रद्धा के कारण उनके आगे ये मस्तक नत हो जाता है, ये नमन ये निभ जाता है सत्कार में श्रद्धा के साथ। इस प्रकार से ये संत महात्माओं को जो रुतबा मिलता है वो इसी कारण मिलता है कि इनके हृदय ऐसे होते हैं, इनके भाव ऐसे होते हैं, इनके शुद्ध मंतव होते हैं, मकसद होते हैं, कल्याणकारी होता है इनका जीवन, इसलिए इनको ऊंचा दर्जा मिलता है। कोई लियाकतों के कारण नहीं, कोई दौलतों के कारण नहीं, कोई शारीरिक ताकत के कारण नहीं कि उस एक मुकाम तक पहुँचे या उस ऊंचाई तक पहुँचे, नहीं, ये कोई पैमाना है ही नहीं। अगर यही पैमाना हो तो भक्तों से ज़्यादा राजा सम्राट जो हो गए गुजरों युगों से होते आए हैं सदियों से, तो सबसे ज़्यादा उनके प्रति नतमस्तक होते, लेकिन ऐसा है नहीं है। एक स्थान जो भक्तों को मिलता है वो उनकी भावनाएं और उनकी मनोवस्था और उनके जीवन की चाल और दूसरों को देन, उसके कारण उनको वो ऊंचा म्यार मिलता है, वो ऊंची एक उनका दर्जा उनको हासिल होता है। और अज्ञानी लोग, क्योंकि अज्ञानी हैं, वो भक्तों को उस प्रकार से देख भी नहीं पाते हैं, वो उन संतों महात्माओं को भी नीची दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए संतों ज्ञानी जनों गुरु पीर पैगंबरों के ऊपर भी जुल्म करते रहे, उनको बदनाम करते रहे। हज़रत मोहम्मद साहब के साथ क्या कम हुई, हज़रत ईसा मसीह जी के साथ क्या कम किया गया, कितने जुल्म, जिन्होंने केवल प्यार का पाठ, प्रेम का पाठ, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, उनके साथ क्या सलूक किए गए। इसी प्रकार से भगवान राम को भी एक हफ्ता नहीं 14 बरस जाना पड़ा, और किस प्रकार से कारण कोई भी बना हो, लेकिन किस तरह से वहाँ पर कांटों पे चलना और थोड़ा समय बीतना, फिर राक्षसों से सामना, इस प्रकार से हम देखते चले जाएं, गुरु साहिबानों के ऊपर भी कितने जुल्म किए गए, तत्ते तवों पे बिठाया गया और शीश लिए गए, इत्यादि ऐसे जुल्म किए गए। ये सब कुछ कर लेने के बाद भी संतों का जो स्थान है, जो म्यार है, वो कभी भी नीचा नहीं हुआ है, वो हमेशा ही ऊंचा चमकता हुआ सितारा, वो रोशन मीनार, वो हमेशा बना रहा है। कोई लाख छोटा कहे, जैसे रहीम जी के वचन अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, कि जो ऊंचे हैं उनको कोई छोटा कहे वो छोटे नहीं हो जाते हैं, वो छोटापन तो उसका है जो छोटा कह रहा है उनको, ऊंचों को वो छोटापन अपना है, वो जो ऊंचाई है वो उनकी अपनी ऊंचाई है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं की भी ऊंचाई अपनी है, इंसान उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं, ये इंसानों की अपनी ही अपना ही छोटापन होता है, ये उनकी ही अपनी अज्ञानता होती है, उनकी ही अपनी संकीर्णताएँ होती हैं, जो इस प्रकार से इस तरह के दृष्टि रखते हुए ऐसे व्यवहार भी करते हैं और ऐसे कठोर वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जैसे दास ने कहा कि संत अपनी चाल चलते चले जाते हैं, संत अपने योगदान दिए चले जाते हैं, जैसे चंदन का काम महक और ठंडक देना, इसी प्रकार से संत भी उस चंदन की तरह ही होते हैं, चाहे उसके साथ जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन वो चंदन अपना वो कर्म किए चले जाता है। तो इसी प्रकार से संत भी यही देन युगों युगों से देते आए हैं, तो आज भी यही देन दे रहे हैं, यही शीतलता दे रहे हैं, यही मानवता इंसानियत को स्थापित करके प्रेम बांटते चले जाते हैं, प्यार बांटते चले जा रहे हैं, अपनापन देते चले जा रहे हैं, अपनेपन की महसूसियत कराते जा रहे हैं। चाहे पोशाक कोई भी है, पहरावा कोई भी है, भाषा कोई भी है, किसी प्रांत से है, किसी संस्कृति से है, वो अपनेपन वाली फीलिंग अपने व्यवहार के साथ देते चले जाते हैं। क्योंकि कहीं पर भी कोई बेगाना कोई कहीं से आता है, उसका एक रूप कोई है, रंग कोई है, लिबास कोई है, पहरावा कोई है, संस्कृति किसी से आया है, तो पहली एप्रीहेंशन ये हो जाती है बेगानेपन वाले, ये कौन अजनबी, ये कौन बेगाना। तो वहाँ पर एक जब कोई प्यार से पेश आ जाता है, एक ऐसा अपने बाजू खोलकर गले लगाने वाले वो जेस्चर करता है, तो वो एप्रीहेंशन सेकंड्स में दूर हो जाती है कि कैसा यहाँ पर बेगाना हूँ, ये भी बेगाने हैं, तो पता नहीं क्या सलूक होगा। तो वो सारी एक एप्रीहेंशन दूर हो जाती है, वो केवल थोड़ा सा भी प्यार का जेस्चर सामने से जब दिखाई देता है, फिर एकदम से कंफर्टेबल महसूस करने लग पड़ता है वो अजनबी कि यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई आशंका नहीं कि कैसा दुर्व्यवहार किया जाएगा या फिर मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। एक अपनेपन का इस तरह से उसको महसूसियत करा दी गई उसके द्वारा जो वहाँ पर मौजूद है और जिसके पास वो चल कर आया है, जिस स्थान पे आया है। इसी प्रकार से भक्तजन भी, ये भी जहाँ पर भी चले जाते हैं, ये दूसरे इंसान को एकदम से अपनेपन का एक ऐसा एहसास करवा देते हैं अपने प्यार के द्वारा, अपने उस करुणा के द्वारा, अपने उस मिठास के द्वारा। ये ज़रा सी भी महसूसियत नहीं होने देते कि कोई पराया है या बेगाना है, ये मानते ही हैं जब सारे अपने हैं, ये मानकर चलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, कि एक नूर से ही उपजे हैं, परमात्मा ईश्वर निराकार की ही अंश आत्मा हर घट में बसती है, घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। तो जब पहले ही इनको ये दृष्टि मिली हुई है, तो उसी दृष्टि के तरह इनके भाव होते हैं, तो फिर वहाँ पर बेगानेपन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर तो ये मिलते हैं इसीलिए, उसी तरह से मिलते हैं जैसे जान पहचान वालों को मिलते हैं, और वही अपनापन और प्यार देते हैं। तो इस तरह से ये संत महात्मा भक्तजन ये एक संदेश, ये पैगाम ये युगों युगों से देते आए और ये देन भी देते आए। केवल पैगाम नहीं, केवल शब्द नहीं, ये वास्तविकता में इनकी अवस्था होती है, ये इनकी दृष्टि होती है, ये इनके भाव होते हैं, एक अवस्था होती है। केवल जिक्र नहीं है, केवल बयान नहीं है, केवल उच्चारण नहीं है, ये एक अवस्था है। तो ये अवस्था, ये भाव इनके होते हैं। तो इसी तरह से, इसी अवस्था, इसी भावना से युक्त होकर सभी इस जीवन को जीते चले जाएं, इस सफ़र को तय करते चले जाएं, यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना है, यही एक अरदास है कि सभी इसी प्रकार से कर पाएं। जहाँ पर संतों महात्माओं के वो प्रेम करुणा के भाव और संतों के गुणों में देखें, तो कहाँ इतने इतने गुण, विनम्र भाव, दास भावना कि इतनी ऊंचाई को छुए, लेकिन दास भावना कि मैं कमीनी कोजी कुचज्जी केव गुण विचारी, बुल्ले शादे लायक नाई शाह नाए तारी, कि मैं कुचज्जी हूँ, कोई मुझे सलीका नहीं आता है जीने का, कोई मुझे मालूम नहीं शिष्टाचार क्या होता है, नहीं मालूम मुझे कोई और पढ़ाइयों का, नहीं मुझे वो तरीके आते, तौर तरीके आते, तो मैं कर्म करके भी बहुत पीछे हूँ। तो इस तरह से पंजाबी में कह रहे हैं कि मैं कुमीनी कचजी कोजी बेगुण कवन बिचारी, बुल्ले शाह दे लायक नाई शाह इनायत तारी। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं, विनम्रता देखो कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए। इस तरह से ये भी एक गुण होता है भक्तों के जीवन में, जो अपने आप को विनम्र बनाकर चलते हैं, अहम का भाव नहीं होता है। जब भक्त कह रहे हैं तो भक्ति में होते ही ये भाव है, ये दिमागों की खेल नहीं है। एक कोई दिमागों में तो अहम ही होता है, ये दिमागों दिमागी खेल खेलने वाले अहम से ही भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हृदय, एक हृदय जो इस तरह से भाव से भरे हुए हैं, प्रेम भाव से भरे हुए हैं, विनम्र भाव से भरे हुए हैं, तो इस तरह से, इसलिए भक्त महापुरुषों की ये भी एक विशेषता है संसार के इंसान के तुल्य। संसार को देखते हैं तो वहाँ पर एक कठोरता, वहाँ पर अभिमान, अहंकार, इससे ही वो युक्त रहते हैं। जिस तरह से कहने वालों ने कहा है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। सर जितना भरा हुआ है, एक दिमागों की खेल, केवल टीका टिप्पणी और दलीलों का सहारा लेना, तो इस तरह से सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। अंग्रेजी में कहावत है, अ लविंग हार्ट इज फार ग्रेटर देन ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड। ए लविंग हार्ट, एक प्यार करने वाला दिल, वो ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड के वही बात कि जो इस तरह से गुरूर में सर उठाए फिरते हैं, जो मगरूर हैं, जो इस तरह से अहंकार अभिमान से भरे रहते हैं, थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए तो अभिमान, थोड़ा सा भी हुनर मिल जाए अभिमान, थोड़ी सी भी दौलत आ जाए अभिमान, थोड़ी सी भी विद्वता आ जाए तो हर किसी को मूर्ख करके ही देखने लग पड़ते हैं। तो इस तरह से अभिमान नहीं, भक्तों का गुण होता है विनम्रता। ये दास भावना से युक्त होते हैं, ये इस प्रकार से ऐसी हलीमी से युक्त होते हैं जिसके कारण ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपस को जो जाने नीचा सही गनिए सब ते ऊंचा, कि आपस को यानी कि अपने आप को निमाना मानते हैं, इसलिए इनकी गिनती ऊंचों में आती है। इस प्रकार से ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं क्योंकि विनम्र होते हैं। और वाकई ही जो अभिमान में चूर सर बुलंद करते हैं, जो एक मगरूर सर वाले होते हैं, तो वो वास्तविकता में उनको भी कहा गया, हालांकि इतिहास भी बताता है और महापुरुषों के वचन भी बताते हैं कि एक शह सवारों रास्ते में खंडहर भी होंगे, वहाँ पर कभी वहाँ पर रुका करो। कि एक सवार हो, मगरूर हो, और जिस तरफ से जा रहे हो, घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे हो, बड़ा सीना तान कर, सर उठाकर, और ये भी नहीं देख रहे सामने कौन आ रहा है, कुचलते जा रहे हो। तो शायर कहता है कि शायद सवारों रास्ते में कई खंडहर भी होंगे, कुछ देर वहाँ रुका करो। उसके कहने का भाव ये है कि वो खंडहर की तरफ देखकर इतनी केवल सोच, केवल इतना ख्याल ले आओ कि ये भी कभी महल हुआ करते थे, यहाँ भी कहीं राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज खाक बन गए हैं। और ये आलीशान महल खंडहर बन गए हैं। तो शह सवारों, उन खंडरों की तरफ भी अवश्य ध्यान दिया करो, यूं ही गरूर ना रहा करो। ये एक मगरूर सर बुलंद के इस तरह से, ये कोई बुलंदी नहीं है कि एक मगरूर सर उठाए फिरें और सोचे कि ये बुलंदी है। ये बुलंदी नहीं है, ये नीचापन है, ये पतन का कारण बनता है। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा, कि जो इस तरह से मैं करता है वही अपने पतन का कारण बन जाता है। इसलिए महापुरुष संत जन एक विनम्रता की तरफ प्रेरित करते हैं कि हमने विनम्र रहना है, हमने दास भावना से युक्त होकर रहना है, किसी चीज़ का मान नहीं करना है, ना दौलत का, ना विद्वता का, ना इल्मों का, किसी चीज़ का भी नहीं। एक विनम्र भाव से जीना है, दास भावना से जीना है, प्रेम भाव से जीना है, प्यार से जीना है। तो ये प्यार करना, ये आ जाए जिसको, वाकई ही उसको जीना भी आ जाता है। जिसको प्यार करना नहीं आया, उसको जीना भी नहीं आया है। इस प्रकार से वो इंसान नियत से भी वंचित रहता है अगर ये प्यार उसके जीवन में नहीं है। तो संत महात्मा भक्त जनों के जीवन से प्रेरणा लेने और उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना, यही एक इस प्रकार से महापुरुषों के प्रेरणादायक वचन उस तरफ ही हमें अग्रसर करते हैं। और साथ साथ केवल ये शब्दों के द्वारा प्रेरणा दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बोध भी हो जाता है, बोध हो जाता है कि वाकई ही अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो वजूद ही क्या है, मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता ही नहीं है, तो मेरा तो कोई एक ऐसा किसी शुमार में नहीं आता हूँ। एक समुद्र के किनारे रेत इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई है उस तट के ऊपर, और वहाँ पर उस रेत के एक कण का भी कुछ वजूद होता है, तो मेरी भी तो उतनी भी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त महापुरुष संत जनों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी उनकी एक दृष्टि होती है, ऐसी उनकी एक भावना होती है, और इसी के कारण वो ऊंचे होते हैं। उसी के कारण एक उनका म्यार जो है वो बहुत विशेषता रखता है। तो आओ साध संगत, इसी तरह से ये संत महात्मा भक्तजन ये याचना, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये अरदास कर रहे हैं कि दातार ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि इसी तरह से हमारी मन की अवस्था बनी रहे, हमें हमेशा ये सजगता, ये चेतनता, ये सुचेतता, ये हमेशा हमें प्राप्त होती रहे। कहीं पर हम भी इस तरह से कहीं भूल ना जाएं, कहीं भटक ना जाएं, कि इस प्रकार से कहीं हम संसार वाली वो प्रवृत्ति वाले ना बन जाएं, हमारी भी कहीं वैसी सोच ना बन जाए, कहीं हम भी आंखें मूंद कर ना चलना शुरू कर दें। तो ये प्रार्थना भी करते हैं, ये इस निराकार से अरदास भी करते हैं कि इस प्रकार से ये कभी भी हम संसार वाली चाल ना चलने लग पड़ें, कहीं आंखें मूंद के चलना ना शुरू कर दें। इस प्रकार से ये एक मन में से जो एक विपरीत भावनाएं हैं अगर निकली हैं तो इनको निकाले ही रखना है, इसको कभी पुनः स्थापित नहीं करना है इस मन में। इस प्रकार से इसको छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ा, ये एक भक्त महापुरुष ये प्रार्थना करते हैं। तो अवसाद संगत, उदास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी भक्तों महापुरुषों को ऐसी लगन, ऐसी तन्मयता, ऐसी भक्ति भावना ये प्रदान किए रखे, और जिस तरह से आपके जीवन में ये गुण प्रवेश किए हैं और सत्य का बोध हासिल किया, आत्मा का कल्याण किया, तो यही सत्य का संदेश, ये मानवता का पैगाम ये दिए चले जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ उजाला ये स्थापित करते चले जाएंगे। तो यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है सत्संग जी। धन्यवाद।